ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी प्यारे बाबा की याद में बैठे हुए गीत सुन रहे थे। ज्ञानी बनो, वरदानी बनो। और बाबा ने जो स्वयं परमात्मा है, जो सबका भाग्य विधाता है, और इस संगम युग पर हम सबका भाग्य बनाने के लिए, हम सबकी वरदानों से झोली भरने के लिए स्वयं भगवान हमारे पास आया है। हम कितने न भाग्यशाली आत्माएं हैं जो स्वयं भगवान भाग्य विधाता हम सबकी हर प्रकार से झोली भरने के लिए आया है। बाबा सिर्फ ज्ञान से ही झोली नहीं भरता है, लेकिन हर प्रकार से बाबा हम बच्चों की झोली भरते हैं। जिसको हम कहें कि बाबा हम बच्चों को संगम युग के ऊपर हर खजानों से झोली भरता है, बाबा हम बच्चों को इतने खजाने देता है और खजाने देकर हम आत्माओं को संपन्न और संपूर्ण बना देता है। हमारी जो महिमा गाई जाती है उस महिमा के अंदर भी वही महिमा है कि बाबा हम बच्चों को सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, हर प्रकार से बाबा हम बच्चों को संपन्न और भरपूर करने के लिए। भगवान के हम बच्चे बने हैं तो भगवान के बच्चों का भाग्य भी बहुत श्रेष्ठ है। हम कितने भाग्यशाली हैं जो स्वयं परमात्मा हम बच्चों के पास चल कर आता है और हम बच्चों की हर प्रकार की झोली भरने के लिए आता है, देने के लिए आता है। भगवान की महिमा गाते हैं, वो वरदाता है, विधाता है, दाता है। कैसे बाबा देता है, हम बच्चे संगम पर बाबा से अनुभव करते हैं। क्योंकि बाबा हम बच्चों को हर प्रकार से भरपूर बना देता है और हर प्रकार से भरपूर संपन्न बनाने के लिए बाबा हम बच्चों को अपना बच्चा बनाता है। भगवान ने सबसे पहले हम बच्चों को यही कहा कि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा बाप हूं, माता पिता हूं। तो माता पिता हमेशा देने वाले होते हैं, बच्चे लेने वाले होते हैं और माता पिता देने वाले होते हैं। उनका कर्तव्य है देना और बच्चों का कर्तव्य है लेना। तो हम बाबा से लेकर के अपने आप को हम संपन्न बनाते हैं, क्योंकि संगम युग पर हम सबका भाग्य भगवान बनाता है, भाग्य की रेखा खींचता है, श्रेष्ठ भाग्य। ये संगम युग पर खींची जाती और संगम युग की ही कमाई हमारी पूरे कल्प चलती है। तो संगम युग है कमाई का युग। इस समय पर हम अपने जितनी भी हम अपनी कमाई करना चाहते हैं वो अब कर सकते हैं। अगर अब नहीं किया तो फिर कोई कमाई का समय आने वाला नहीं है। यही समय, यही सीजन है। और बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, मैं कल्प के अंत में ही तुम बच्चों को देने के लिए आता हूं। और जो इस समय पर तुम बच्चों को देता हूं, जितना हम बच्चे इस समय अपनी कमाई करते हैं, जमा करते हैं, वो कमाई हम पूरा कल्प खाते हैं। कितनी बड़ी कमाई है, एक जन्म की कमाई और 84 जन्म चलती है एक ही जन्म में। इतना बाबा हम बच्चों को भरपूर कर देते हैं कि हम 84 जन्म तक हम क्या रहते हैं, भरपूर रहते हैं। देखो बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे ये तुम्हारा लास्ट जन्म है, है ना। 84 जन्म हम लेते हैं, ये हमारा लास्ट जन्म है। और लास्ट जन्म में भी हम सबके पास अगर देखा जाए तो बहुत कुछ है दुनिया के हिसाब से, तो लास्ट तक भी हमारे पास इतना है जो हम सुखी से अपने जीवन को जी सकते हैं। तो ये हमारी जो कमाई है, ये संगम युग पर हम बच्चे अपनी कमाई करते हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को समय प्रति समय यही इशारा देते हैं कि बच्चे संगम युग का एक एक सेकंड हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। एक सेकंड हमें कितने जन्मों की कमाई कराता है। बाबा ने तो कहा ना, मैं सेकंड में तुम बच्चों को जीवन मुक्ति देता है, मैं सेकंड में मिलती जीवन मुक्ति। सेकंड में मिली ना जीवन मुक्ति, बाबा सेकंड में मिला मुक्ति, जीवन मुक्ति सेकंड में मिलती है। कल्प के हिसाब से, 5000 वर्ष के हिसाब से संगम युग कितना है, है? सेकंड। और संगम युग में भी हम बच्चों के लिए पुरुषार्थ करने का समय कितना मिलता है ना? संगम युग 100 साल कहते हैं, उस 100 साल के अंदर भी हम सबको पुरुषार्थ करने का समय कितना मिलता है, उस समय के अंदर हमको कितनी कमाई करनी है। तो बाबा हम बच्चों से सेकंड में कमाई कराता है। ऐसा कोई टीचर मिला जो सेकंड में हम सबसे पढ़ाई करा करके हम सबको इतना श्रेष्ठ बनाए और श्रेष्ठ पद दे, और श्रेष्ठ पद दे करके इतना भाग्यशाली बनाए। तो भाग्यशाली बनाने वाला स्वयं भगवान है, जो हम बच्चों का भाग्य बना रहा है, है ना? रोज बच्चों को बाबा क्या करते हैं, भरपूर करते हैं। देखो हम बाबा की मुरली सुनते हैं, तो मुरली से बाबा हम बच्चों को कितने खजाने देते हैं, है? कितने खजाने बाबा के मिलते हैं? एक एक वरदान, एक एक खजाने, एक एक महावाक्य का अगर हम चिंतन मनन करते हैं तो बाबा से हम बच्चों को कितने खजाने मिल रहे हैं। खजाना भी देता है, साथ साथ वरदान भी देता है, साथ साथ स्वमान भी देता है। मुरली से क्या मिलता है? खजाना भी मिल रहा है, स्वमान भी मिल रहे हैं, तो साथ में वरदान भी मिल रहे हैं। कितने वरदान मिलते? भक्ति के अंदर कोई भी अगर भगवान से वरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी मेहनत करते, कितनी तपस्या करते, कितना समय लगाते, और मिलता क्या है? एक वरदान। और हम बच्चों को बाबा से रोज वरदान मिलता है। अगर हम उन वरदानों को लिखें कि एक वरदान रोज का बाबा से मिल रहा है, मास के 30 वरदान हो जाते हैं। कितने? तो वरदान नहीं, वरदानों से बाबा हम बच्चों को भरपूर कर रहा है। वरदानों से हम बच्चों को, हमारी झोली भगवान भर रहा है। और कितना स्वमान देता है कि हम क्या है। तो ये स्वमान ही हमें शक्ति प्रदान करता है, और जो शक्ति हमसे पुरुषार्थ कराती है ना, स्वमान बाबा क्यों देता है? कि सोमान इसलिए जिस सोमान से हम आत्मा के अंदर बल आता है, शक्ति आती है, और वो शक्ति हमको पुरुषार्थ करने में मदद करती है। बाबा ने हम बच्चों को क्या स्मृति दिलाई है? सोमान दिया कि तुम देवता थे, ऐसे थे, स्मृति दिलाई बाबा ने, और उस स्मृति के आधार पर ही हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। हमारा पुरुषार्थ कैसे चल रहा है? ये स्मृति है ना, लक्ष्य बाबा ने दिया, सोमान बाबा ने दिए, वरदान हमको बाबा ने दिए, जिसके आधार से हम सबका पुरुषार्थ क्या हो गया? सहज हो गया। कोई मुश्किल नहीं लगता है। किसी को मुश्किल लगता है पुरुषार्थ करना? मुश्किल कब लगता है? जब हमको अपने सोमान और वरदानों की स्मृति नहीं होती। देखो, कोई भी कार्य की मुश्किलात लगती है या समस्या लगती है तो तभी लगती है जब उसके जीवन में खालीपन होता है। हम आत्माएं भरपूर हैं तो हमें कभी भी ऐसा अनुभव नहीं होगा कि हम नहीं कर सकते। बाबा ने हम बच्चों के अंदर इतनी शक्तियां भरी हैं, और जिन शक्तियों के आधार से कोई भी कार्य हम सबके लिए सहज हो गया है, क्योंकि बाबा ने हम सबको जो ज्ञान दिया है वो कौन सा ज्ञान दिया? सहज ज्ञान दिया। बाबा ने हम बच्चों को कौन सा योग सिखाया? सहज योग सिखाया। सहज ज्ञान है और सहज योग है। अभी सहज ज्ञान में क्या हमको मेहनत लगती है? सहज योग में क्या मेहनत लगती है? देखो बाबा, हर प्रकार की समझ, ज्ञान माना समझ, हर प्रकार की समझ अर्थात हर प्रकार का मार्गदर्शन बाबा हम बच्चों को रोज मुरली में देता है, और मुरली में देता है, उस मुरली के ऊपर हम बच्चों का जितना अटेंशन होता है उस अनुसार हमको हर प्रकार का मार्गदर्शन मिलता जाता है, और उस आधार से हम सबका जो पुरुषार्थ है वो सहज हो जाता है। हमें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाबा ने आज कहा, बच्चे ये करो तो करो है? करना शुरू कर देते हैं तो सहज है, अगर हम नहीं करते तो मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बाबा जो हम बच्चों के लिए कहते हैं, भगवान जो कहता है कि बच्चे ये करो, तो भगवान ने कहा माना हमारे लिए एक वरदान है, और उस वरदान के अंदर क्या होती है? शक्ति होती है ना, और वरदान में शक्ति है, और वो शक्ति कार्य कराती है। देखो, शक्ति को अगर हम समय पर यूज करते हैं तो वो शक्ति हमें सफलता दिलाती है। अगर हम उसको समय पर यूज नहीं करेंगे तो कितनी भी शक्ति होते हुए भी हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो समय पर अगर हम यूज करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। तो कौन से समय पर हमको कौन सी शक्ति को, कौन से पॉइंट को, कौन से ज्ञान को हमको स्मृति में लाकर पुरुषार्थ करना है, वो बाबा हम बच्चों को हर मुरली में देता है। देखो, कोई भी प्रकार की अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है, कोई समस्या आती है, आप कुछ भी नहीं करो, बस बाबा की मुरली उठाओ और उठा करके आप पढ़ो, बाबा आपको उस मुरली के अंदर पूरा क्या दे देगा? मार्गदर्शन दे देगा। बच्चे क्या करना है वो बाबा विधि सुना देगा। तो हम सबके लिए तो सहज है, क्योंकि बाबा सदैव हम बच्चों के लिए सदैव हाजिर है। कोई भी बात अगर हम बच्चों को मुश्किलात हमारे जीवन के अंदर आती है, पुरुषार्थ के अंदर आती है, तो बाबा ने विधि बहुत सहज बताई। हम सहज विधि क्या है, एक तो मुरली है, हम बाबा की मुरली से ले सकते हैं। दूसरी बात, कोई भी बात आती है हम बाबा के पास जाके बैठो, बाबा आपको हर बात क्या करेगा, टचिंग देगा कि बच्चे ऐसे ऐसे करो, किस समय हमें क्या करना है, वो टचिंग हमको बाबा की उस समय पर मिलती है। तब तो हम कहते ना कि भाई बाबा हम बच्चों का साथी है, वो हमारे साथ है। अब वो साथी हमारे सदैव साथ है, उसका अनुभव हम कैसे करते हैं? बाबा हमारे साथ है, उसका अनुभव हम सबके पास यही है, कोई भी बात आती है उस बात के लिए हमें बाबा की शक्ति उस समय मिलती है, बाबा की टचिंग मिलती है, बाबा का मार्गदर्शन मिलता है, तो हम क्या कहते हैं, बाबा मेरे साथ है, बाबा ने मुझे ऐसे टच किया, तो बाबा ने टच किया, बाबा करा रहा है, तो हमारा क्या हो जाता है, सहज हो जाता है। तो सहज माना ही वरदान, कहते ना वरदान माना जिसमें मेहनत ना हो। तो बाबा हम बच्चों से बिना मेहनत का पुरुषार्थ कराता है। कोई मेहनत लगती है? भक्ति के अंदर देखो मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं और कितना अपना धन संपत्ति समय लगाते हैं, लेकिन प्राप्ति कितनी होती है। और हम बच्चे ज्ञान में आकर के हम कितना समय लगाते हैं, कितनी संपत्ति लगाते हैं, लेकिन हम बच्चों को प्राप्ति कितनी होती है ना। तो बाबा ने हम बच्चों को इतनी अनेक प्रकार की प्राप्तियां स्वयं बाबा करा रहा है। तो जैसे कि हम आत्माएं बाबा के वरदानों में पल रहे हैं, वरदानों में पलने वाले हम कितने भाग्यवान आत्माएं, तो सदैव अपने भाग्य को हम देखते रहें, सदैव अपने भाग्य का हम सिमरन करते रहें। जितना भाग्य का हम सिमरन करते रहेंगे उतनी हमें खुशी भी रहेगी और साथ साथ शक्ति भी रहेगी। हम सब ने देखा है, हम बाबा के अनुभव सुनते हैं, ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया। बाबा को सदैव बुद्धि में क्या रहता था, हाँ? बाबा मेरे को ये बना रहा है, बाबा मुझसे ये करा रहा है, हैं? भगवान ने मेरा भाग्य बनाया है। तो बाबा को सदैव अपना भाग्य स्मृति में था, बाबा को सदैव अपना लक्ष्य स्मृति में था, बाबा को सदैव बाबा स्मृति में था कि बाबा मेरे से करा रहा है। तो हम बच्चों से भी कौन कराता है, हैं? हम ये समझेंगे मैं पुरुषार्थ कर रही हूं तो मुश्किल लगेगा, लेकिन बाबा मेरे से करा रहा है तो क्या हो जाएगा, सहज हो जाएगा। तो हमेशा बाबा करा रहा है ये स्मृति अगर हमें, क्योंकि करण करावन हार बाबा को कहा, तो करण करावन हार बाबा क्या कराता है, कोई बाबा का जो कार्य है वो कराता है, कार्य भी कराता है, हम बच्चों से पुरुषार्थ भी कराता है, सेवा भी कराता है, भाग्य भी बनवाता है, हा? बाबा ही कराता है। अगर बाबा करा रहा है तो बाबा कौन है, बाबा स्वयं भगवान है, और स्वयं भगवान हम बच्चों से जो भी कराएगा वो क्या कराएगा, राइट कराएगा, और राइट कराएगा तो राइट में ही शक्ति है, है? भगवान जो कराएगा उसमें क्या है, शक्ति है। तो बाबा हम बच्चों से करा रहा है ये स्मृति हमें रहती है, तो हम हर रीति से सहज पुरुषार्थ कर सकते हैं। जब हम सोचते मैं करता हूं मुझे करना है तो भारी हो जाते हैं, लेकिन बाबा करा रहा है। बाबा हमेशा कहते कि हम सब बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा के बच्चे हैं, बच्चे माना ये स्मृति हमें हल्का कर देती है। बाबा हमारे साथ है, हम बाबा के बच्चे हैं, बच्चे माना माया से बचे हुए, बचे हुए ना। और बाबा रोज हम बच्चों को स्मृति दिलाता है, हम भूल जाते हैं बच्चे, लेकिन बाबा पहले पहले मुरली में हमको कौन सा शब्द बोलते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चों को सुना रहा है बाबा, है ना। तो बाबा हम बच्चों को सुना रहा है, करा रहा है, तो बाबा करा रहा है तो हर कार्य सहज रहेगा। तो हम सदैव यही बुद्धि में रख करके चलें कि बाबा मेरे द्वारा ये कार्य करा रहे हैं और मैं कर रही हूं। पुरुषार्थ भी बाबा करा रहा है, मैं नहीं कर रही हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, बाबा करा रहा। तो बाबा हमसे क्या कराएगा, सहज भी कराएगा और राइट भी कराएगा। कोई भी कार्य गलत नहीं होगा अगर बाबा करा रहा है, क्योंकि बाबा तो राइट है ना, बाबा तो सत्य है ना। बाबा की महिमा हम क्या गाते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो सत्य है, तो सत्य ज्ञान देता है, सत्य योग सिखाता है। तो जो भी कार्य बाबा हमसे कराएगा वो कौन सा कराएगा, सत्य कराएगा। तो जब सत्य होगा तो सत्य में क्या होती है, शक्ति होती है, ताकत होती है। तो सत्य करते करते हम शक्तिशाली बने। देखो कहा ना, सत्य ज्ञान सुना, तो सत्य ज्ञान सुनते सुनते हम क्या बन गए, आत्माएं शक्तिशाली बने। तो शक्तिशाली जब बन गए हम तो हमारे लिए कोई भी कार्य करना मुश्किल नहीं है। शक्तिशाली बनना अर्थात वरदानी आत्मा बनना। अब वरदानी के साथ साथ बाबा हम बच्चों को कहते महादानी भी बनो। जो हम बच्चों ने पाया है वो हम बच्चों को क्या करना है, दूसरों को देना भी है। देना माना लेना, जितना हम देते हैं उतना हम अपने पास जमा करते हैं। क्योंकि जैसे बाबा दाता है वैसे हम बच्चों को भी बाबा कहते बच्चे क्या बनो, दाता बनो। तो दाता विधाता स्वयं भगवान हम बच्चों को बना रहा है। ये टाइटल भगवान ने हम बच्चों को भी संगम पर दिए, कहा ना स्वमान दिए। तो बाबा ने हम बच्चों को कितने स्वमान दिए, आप दाता भी हो, भाग्य विधाता भी हो, वरदाता भी हो, भाग्यवान भी हो। तो ये बाबा के मिले हुए हम बच्चों को स्वमान और वरदान है, जिनके द्वारा ही हम अपने को सहज अनुभव कर सकते हैं, चल सकते हैं, चला सकते हैं। क्योंकि ये समय जो है अब हमें अपने जीवन में भरने का समय है। देखो आप सभी बाबा के घर में मधुबन में आते हैं, मधुबन में किस लिए आते हैं, है? मधुबन में किस लिए आते हैं हम सभी, बाबा से अपनी झोली भरने के लिए आते हैं। बाबा से हम मिलन मनाने के लिए आते। मिलना माना, मिलना माना झोली भरना। बाबा से मिलन मनाना माना अपनी झोली को भरपूर करना। देखो मिलते हैं तो मिलने से हमें क्या होता है, खुशी होती है कि भाई भगवान से हम मिलने के लिए, बाबा से मिलने के लिए मधुबन आते हैं। तो मधुबन में आकर के हम सभी अपनी झोली को भरपूर करके जाते हैं, क्योंकि मधुबन है ही, मधुबन क्या करते हैं, मधु प्राप्त करने के लिए आते हैं, है ना। तो अपनी झोली भरने के लिए बाबा के पास आते हैं, तो बाबा से भर करके हम जाते हैं। ये भी संगम का समय ही है, और समय में थोड़ी मधुबन मिलेगा, मधुबन कम मिलता है, संगम पर ही मिलता है, जहां बाप आता है। कहते ना, मधुबन माना जहां मुरली चले, मुरली बजे, गीत गाते हैं ना, मधुबन में मुरली बाजे, तो मधुबन में ही मुरली बजती है, बाबा की मुरली मधुबन में ही होती है। तो मधुबन भी कब होता है? संगम युग पर ही होता है, और संगम युग पर ही हम बाबा की मुरली सुनने, बाबा से मिलन मनाने के लिए हम बाबा के घर मधुबन में आते हैं। तो मधुबन में आ भरपूर करते हैं। तो ये संगम का समय हमारा, अपने को भरपूर करने का समय है। अब इस समय की भी हम बच्चों को, बाबा कहते बच्चे वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि इस ये समय हमारा, एक एक सेकंड हमारी कमाई का समय है। अगर हम एक सेकंड ही ऐसे गवा देंगे तो फिर वापस नहीं आएगी। तो जो एक एक सेकंड है, उस सेकंड की वैल्यू को समझ करके हमारा पुरारत अभी चलना चाहिए, क्योंकि ये समय फिर वापस नहीं है। कहते ना, जो समय चला गया फिर वो वापस नहीं आता है। तो इसीलिए जो समय है हमारा, इस समय की भी हमें बहुत वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि बाबा हम बच्चों को इस समय ही दे रहा है, और हम बच्चे भी इसी समय ले सकते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है, समय भले हो लेकिन हमारे पास लेने का समय ना हो, तो फिर खाली रह जाएंगे। इसलिए बाबा कहते, समय के महत्व को जानकर हम बच्चों को अपना पुरुषार्थ अभी करना चाहिए। अभी समय बहुत वैल्यूबल है, हम सब देख भी रहे हैं दुनिया के आसार, देख रहे हैं बाबा हम बच्चों को समय कहते आए कि बच्चे ऐसे ऐसे सब परिस्थितियां आएंगी, वो परिस्थितियां हम प्रैक्टिकल में अभी सब देख रहे हैं। कैसे प्रकृति अपना स्वरूप दिखा रही है, कैसे आत्माएं अपना स्वरूप दिखा रही है, कैसे संसार का वातावरण तमोगुणी बनता जा रहा है। तो बाबा हम बच्चों को जो कहते थे वो वर्तमान हम सब देख रहे हैं। इसलिए हम बच्चों को अपने समय की वैल्यू को ध्यान में रखते हुए अपने पुरुषार्थ को हमें बहुत तेज बनाना है, पुरुषार्थ के ऊपर विशेष अटेंशन देना है। अटेंशन देना माना ही अपने ऊपर वरदान प्राप्त करना। ओम शांति।
थैंक यू सो मच दीदी, एंड आई थिंक दैट दिस इज रियली शोन अस द ईज ऑफ बीइंग अ बेस्टोअर, दैट वी ऑल वी नीड टू डू इज फिल आवरसेल्व्स विद द ब्लेसिंग्स, the fortune, Baba's canopy of protection, his guidance, and we naturally become a bestower. So we welcome Ravi Bhai from Pandabhavan. I'm sure everyone knows his face very well, and he looks after Om Shanti Bhavan for all of us. So thank you for all your efforts and care in Madhuban. And he's going to ask Prabhadidi some questions. But if anyone from the audience has any questions, please write them, and you can bring them up, and we'll give them to Ravi Ben to ask Prabhadidi.
Om Shanti. Adarniya Prabhadidi ji ne hame pyare baap dada kis prakar se data ban karke bharpoor karte hain. ऐसे उनके दाता की क्वालिटीज़ बता करके हमको भी भरपूर कर दिया, और सब में अभी मैं समझता हूँ दातापन इमर्ज हो गया होगा। हम जानते हैं, हम देखते हैं और सुनते रहते हैं कि सदा प्यारे बाप दादा और सभी हमारे वरिष्ठ सदा हमको ये कहते हैं इंस्पायर करते हैं कि हमें बाप समान बनना है। तो जब बाप समान बनने की बात आती है तो बाबा की सबसे पहली क्वालिटी है दातापन। बाबा सबसे पहले दाता है, और उसमें भी अगर हम ध्यान से देखें तो शिव बाबा से हमें बहुत सारी शक्तियां मिलती हैं, ज्ञान से हमें भरपूर करते हैं बाबा, और उसके बाद जब ब्रह्मा बाबा से हमको रूहानी स्नेह मिलता है, और बाबा के जीवन से अनुभव से भी हम भरपूर हो जाते हैं। तो दीदी से मैं पूछना चाहूंगा, सबसे पहले दीदी जी, सबके पास ज्ञान भरपूर है और सभी को बाबा ने दाता किस प्रकार बनना है उसकी शिक्षा भी अच्छी तरह दी है, लेकिन जब हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में चलते हैं, देखते हैं कि कार्य व्यवहार में जब हम सबके साथ रहते हैं, एक छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस हमको सब औरों से होती है। अगर मैं किसी स्थान पर गया तो वहां पर किसी ने मुझे वेलकम करना चाहिए, किसी ने मुझे पानी भी पूछना चाहिए, किसी ने मुझे स्माइल करके अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसे कहीं पर भी रोज के व्यवहार में हम लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं दूसरों से कि ये मिले, ये सूक्ष्म का जो एक प्रकार से मांगना ही कहेंगे। तो इससे हम कैसे अपने आप को बचाएं और फिर आगे दातापन कैसे इमर्ज करें?
बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये सभी बाबा के बच्चों के अंदर हमेशा ही अपेक्षाएं रहती हैं कि हमको कोई पूछे, हमको कोई रिगार्ड दे, रिस्पेक्ट दे, या ये सब बातें होती हैं। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को ये छोटी छोटी बातों से बाबा हम बच्चों को अभी न्यारा बना रहा है। मुझे इस बात के ऊपर एक बाबा का एक सैंपल याद आता है कि एक बार बाबा ब्रह्मा बाबा के पास एक बहन गई और बाबा के पास जाकर के बाबा से प्रश्न किया कि बाबा, फलानी बहन ऐसा करती है, आप उसको समझाओ। तो बाबा ने सुन लिया, अच्छा बच्ची। फिर उसके बाद वो बहन देखती रही कि ये क्या कर रही है, कैसे कर रही है, लेकिन उस बहन के अंदर वो परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। तो उसको लगा बाबा ने इसको ये बात कही नहीं है। तो उसने दूसरी बार बाबा के पास गई तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, बाबा ध्यान पर देगा। दूसरी बार भी आ गई, फिर उस पर उसके अंदर वो ही चल रहा था कि बाबा इसको कहे और ये परिवर्तन करे। तो दूसरी बार भी देखती रही, फिर जब नहीं रहा गया तो फिर बाबा के पास तीसरी बार गई कि बाबा आपको कहा था, आपने उसको समझाया नहीं, बताया नहीं। तो बाबा ने बड़े प्यार से उस बहन को कहा कि बच्ची, आप ये बताओ कि आप क्या बनने वाली हो। तो उसने कहा, बाबा मैं तो राजा बनूंगी, ये बनूंगी। तो कहा, तुमको प्रजा नहीं चाहिए है? बाबा ने उत्तर क्या दिया, तुमको प्रजा नहीं चाहिए? तो बहन चुप हो गई, आ गई, बाबा ने उत्तर उसको दे दिया। तो हर एक आत्मा का अपना अपना हिसाब किताब है, है? हमको बाबा ने यही कहा है कि बच्चे, अनेक जन्म हम आत्माओं से लेते आए हैं, लेकिन अब हमको भगवान से बाप से लेना है। बाबा हम बच्चों को हर प्रकार से भरपूर कर रहा है, मान भी दे रहा है, रिगार्ड भी दे रहा है, रिस्पेक्ट भी दे रहा है, पूछ भी रहा है, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, हर रीति से बाबा हम बच्चों को भरपूर कर रहा है। हमको बाबा से लेना है, न कि आत्माओं से लेना है, क्योंकि बाबा ने हमको ये बताया, दाता माना देना। लेना बाबा से है, आत्माओं से लेने की कोई अपेक्षा नहीं रखनी है।
बहुत सुंदर दीदी ने जवाब दिया। मैं अगर इस जवाब को थोड़ा सा समराइज करूं, तो उस बहन ने सबसे पहले तो अपेक्षा रखी उस दूसरी बहन से कि इसने चेंज करना चाहिए अपने आप को, और फिर वो बात उसने अपने मन पर धरी, उसके बाद में बाबा को जाकर के सुनाई, और बाबा से भी ये आश रखी, एक्सपेक्टेशंस रखी कि बाबा इसको चेंज कराए, बाबा इनको कहेंगे तो ये चेंज होगा। और उसके बाद जब बाबा ने उनको एक मैसेज कन्वे किया और बताया कि आपको राजा बनना है तो आपको प्रजा नहीं चाहिए, तो बहुत ही गहरा ये उत्तर है कि कैसे हमें हमारे सामने, हमारे व्यवहार में आने वाली आत्माओं के संस्कारों को समाना है या फिर उसको एडजस्ट करना है, ये हमें अपने आपको उससे ऊपर उठना है। नहीं कहा जाता है कि भाई, एक बार किसी ने बताया कि भाई ये बहुत बड़ी चोटी है, इस पर आपको चढ़ना है। सब लोग देखते हैं उस चोटी को, कुछ लोग कहते हैं भाई उस इतनी बड़ी चोटी पर हम तो नहीं पहुंच सकते, हमारे में इतनी कैपेसिटी नहीं है। परंतु कहा जाता है अगर आप एटलीस्ट स्टार्ट करो चढ़ना, तो भले आप टॉप पे नहीं पहुंच पाओ, लेकिन जो और दुनिया है नीचे दिख रही है उससे तो ऊपर उठ जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, है ना। तो ये वो बात है कि अपने आप को उन चीजों से ऊपर उठाओ, उसमें फंसे नहीं रहो। कि ये चीज, कई ऐसी बातें होती, बहुत गहराई से दीदी ने इसका आंसर दिया है स्मार्टली, कि हम कई चीजों को, कई बातों को पकड़ के बैठते हैं, होल्ड करके बैठते हैं, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, उसका कोई कभी प्रॉपर सॉल्यूशन आना नहीं है। जो दीदी ने बताया कि बाबा ने जो आंसर दिया, बहुत बहुत ऊंची बात है। थैंक यू दीदी। और दूसरी बात हम आपको पूछना चाहेंगे कि दीदी, जब हम आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार में आते हैं, और कई बार ऐसे होता है किसी के भाव स्वभाव, किसी के संस्कार हमें पसंद नहीं आते हैं, सीधी भाषा में कहे तो हमारी कईयों से बनती नहीं है, तो जब वहां पर अगर हम श्रीमत से काम लेते हैं, परिस्थितियों को संभालते हैं, और क्योंकि हम सब ब्राह्मण हैं, हमें पता है कि कहां कैसे व्यवहार करना है, तो वहां क्या कोई दातापन का गुण है, और है तो क्या है, अगर हम श्रीमत पर चलकर स्वभाव संस्कारों में बिगड़ती परिस्थितियों को संभाल लेते हैं।
इसके लिए मैं ये कहेंगी कि बाबा ने, हम कई बार देखते हैं कि हर बात हमारे अनुसार नहीं होगी, कई बार बातों में मतभेद भी होता है, हमको कोई की बात अच्छी भी नहीं लगती है, तो जैसे हमको अच्छी नहीं लगती है वैसे उसको भी अच्छी नहीं लगती होगी। तो बाबा ने हम बच्चों को ये भी बताया कि बच्चे उस समय पर, मान लो कोई आपसे ये कह रहा है आपको ये करना ही है, तो उसका वो फोर्स होता है, और हम कई बार समझते हैं कि ये जो कह रहा है ये गलत है, हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई वो जब फोर्स से बोलता है कि आपको ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, और अगर हम नहीं करते हैं तो फिर वहां क्या होता है, मतभेद हो जाता है। तो उस समय पर बाबा ने हमको ये कहा कि वो अपने जोश में होता है, उसको आप उस समय कितना भी समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई ये काम आप ऐसे नहीं करो, ये ऐसा नहीं, तो वो मानेगा नहीं। इसीलिए उस समय हमको शांत हो जाना चाहिए, उसको बाबा की याद की दृष्टि दे करके शांत रहें, और फिर जब उस हम देखें कुछ समय के बाद जब उसका मूड हो उस समय अगर हम उस बात को समझाएंगे तो राइट बात वो समझेगा। अगर उसी समय वो हम उसको कहने जाएंगे तो वो समझेगा नहीं। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए, कोई पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन कर रहा है, जोश में है, तो हमें शांत रहना चाहिए।
बहुत बहुत थैंक यू दीदी। और दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि बहुत लोगों के मन में ख्याल होता है, बाबा ने भी हमें अपने मुरलियों में सदा बताया है कि दाता वही बन सकता है जो स्वयं अंदर से भरपूर है, संपन्न है। तो क्वेश्चन ये है दीदी कि अभी हम संपन्न बन रहे हैं, कोई भी यहाँ पर बैठा हुआ संपन्न नहीं है, संपूर्ण नहीं है, तो हम संपन्न बनने के बाद ही दाता बन सकते हैं या संपन्न बनते बनते भी दाता भी बनते बनते रह सकते हैं?
हमें दोनों ही काम करने।
कैसे करने है? हम आपसे विधि जानना चाहते हैं।
दोनों ही काम करनी है, लेना भी है तो देना भी है। क्योंकि अगर हम लेते जाए अपने को भरपूर करते जाए और फिर देंगे तो वो समय तो आने वाला नहीं है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को ये विधि बताई है कि हम जो ले रहे हैं, क्योंकि लेना हमको भगवान से ना, ये विधि है, हमको आत्माओं से नहीं लेना, क्योंकि आत्माओं से तो लेते 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 हम खाली हो गए। लेना है अभी हमको बाबा से, और बाबा हम बच्चों को दे रहा है भगवान से लेकर हमको आत्माओं को देना। दाता माना देने वाला, लेने वाला नहीं। तो हमें ये स्मृति, हम देने वाले, टाइटल हमने लिया कि हम दाता हैं, है? तो दाता माना उसका शब्द ही ये होता है देने वाला। तो मुझे देना है, मुझे किसी से लेना नहीं। जो देगा वो उसको मिलेगा ऑटोमेटिक, उसको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमें यही स्मृति बुद्धि में रखे कि हमारा कर्तव्य है बाप से लेना है, वो हम बच्चों को दे रहा है, भरपूर कर रहा है, और मेरा कर्तव्य है देना। और हम बच्चों को ये भी बुद्धि में स्मृति रहे कि हम बाबा के बच्चे हैं और ये हमारे सभी भाई बहन हैं, इन भाई बहनों को मुझे ही देना है, भरपूर करना है, ये मेरा कर्तव्य।
दीदी जी आपने कहा कि हमें केवल एक बाप से लेना है, किसी भी मनुष्य देहधारियों से कुछ भी नहीं लेना है, लेकिन एक रूहानियत भरे वातावरण में या जैसे हम आइडियली ब्राह्मण लाइफ जीते हैं उसके चलते अगर कोई हमें स्नेह देता है, प्रेम देता है, चाहे स्थूल वस्तु भी देता है, ये सूक्ष्म भी और स्थूल भी आदान प्रदान तो चलता ही रहता है, तो क्या ये नहीं करना चाहिए, निग्लेक्ट करना चाहिए, अस्वीकार करना चाहिए, या लेना है तो किस भाव से लेना है?
नहीं, लेना और देना ये तो एक परिवार है, है ना? हम परिवार में हैं, बाबा हमारा बाप पिता है और ये हमारा परिवार है। परिवार में भले लेन देन होती है लेकिन हमको मांगना नहीं है, ये एक स्नेह है। स्नेह के आधार से हम एक दूसरे को देते हैं, या हम शक्ति भी देते हैं, या हम ज्ञान भी देते हैं, या स्थूल चीज भी देते हैं, या प्रेम भी देते हैं। कहते हैं जहाँ प्यार है वहां सब कुछ। और प्यार कब रहेगा? जब हम हमारी बुद्धि के अंदर ये चीज रहेगी कि हम एक पिता परमात्मा की संतान है, हम बाबा के बच्चे हैं, ये हमारे भाई बहन हैं, इनको हमें देना है। लेने की नहीं बात आई ना, दाता, दाता माना देने वाला, तो मुझे किसी से लेना नहीं, लेने की अपेक्षा नहीं रखनी। अगर हम अपेक्षा रखते हैं, मांगते हैं, तो मांगने से मिलता नहीं है। अगर नहीं मांगते हैं तो हमको ऑटोमेटिक मिलेगा। जहां प्यार होगा वहां मिलने ही वाला है, वो प्यार होगा तो देगा ना, अपने आप ही देगा, न्योछावर करेगा। और अगर नहीं देता है तो हमारे से उसका स्नेह नहीं है, प्यार नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता है हर आत्मा से हर आत्मा को प्यार स्नेह रिगार्ड रिस्पेक्ट हम जितना देते जाएंगे उतना हमको मिलेगा। बाबा हम बच्चों को क्या देता है? प्यार देता है, रिगार्ड देता है, रिस्पेक्ट देता है। इसी से तो बाबा भरपूर करता है ना। रोज बाबा कहते मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। हाँ, तो बाबा हमको इतना प्यार देता है जो प्यार से हम सबको भरपूर करता है। तो हम बच्चों का भी आपस में, क्योंकि हम एक बाप के बच्चे हैं, तो हमारा भी आपस में प्यार स्नेह हो। लेना बाबा से है, देना हमको सबको है। हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। जो देगा तो लेगा, देगा ही नहीं तो लेगा कैसे? हम लेने की इच्छा करेंगे कि भाई मुझे ये चाहिए, तो इच्छा है तो देना शुरू कर दो तो ऑटोमेटिक मिलेगा।
बहुत सुंदर। एक बाबा का महावाक्य याद आ रहा है कि जब हम देते हैं, देते रहते हैं, तो देने में ही लेना समाया हुआ है। तो आपका आंसर उसी महावाक्य से रिलेट हो रहा है। तो दीदी, कई बार हम देखते हैं जैसे हर किसी को अपना अपना काम पता है, अपनी अपनी ड्यूटी या जो भी है हर कोई करता है, पर कुछ ब्राह्मणों में, कुछ लोगों में ये संस्कार होता है कि उनको, जैसे बाबा भी कहते हैं ना कि दूसरे के जज बनते हैं और खुद के वकील बनते हैं, अपनी बात को जस्टिफाई करते रहते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूं वकील बन करके, और दूसरे को जज करते रहते हैं, है ना। तो जब कोई आकर के किसी को डायरेक्शन देता है कि तुमने ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, वैसे नहीं वैसे करना चाहिए, तो जब वो उसको डायरेक्शन देता है तो जनरली ऐसे होता है जिसको डायरेक्शन दिया जाता है उसको वो पसंद नहीं आता है कि जिसने मुझे सिखाना था सिखा दिया, जो मुझे बताता है उसने बता दिया, लेकिन आप जो बीच में आके डायरेक्शन दे रहे हो तो उसको तो लगता है कि मैं तो दाता बनकर के इसको समझ दे रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं, तो ये क्या सही है? ये दातापन का भाव है, इसको क्या कहेंगे दीदी?
क्या होता है आजकल, कहते कहने से कोई करता नहीं है, लेकिन उसको अगर करके दिखाया जाए तो ऑटोमेटिक अपने आप करने लग जाएंगे। इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल आपको बाबा का सुना देती हूँ। एक बार मधुबन में जब बाबा साकार में थे, तो मधुबन के अंदर हमारी भूरी दादी थी। तो भूरी दादी जी सब्जी लेके आते थे, आपको याद होगा। तो मधुबन में सब्जी आती थी, भूरी दादी लाते थे। उस समय मधुबन में कोई गाड़ियां नहीं थी, बस में ही सब्जी लेके दादी आती थी। तो एक बार भूरी दादी बस में सब्जी लेकर आ रहे थे, तो सब्जी कुछ लेट आई, तो ऊपर आने में सब्जी लेट हो गई, 1:30 बज गया। और सब लोग जो भी ब्राह्मण हैं वो 12 बजे खाना खा करके सब रेस्ट में चले जाते। अब 1:30 बज गया, सब्जी लेट आई, तो अभी वो सब्जी में हरी सब्जी थी जिसमें पालक था, धनिया था, मेथी थी। तो भूरी दादी बोली कि अब तो सब लोग सोने चले गए हैं और ये सब्जी अगर अभी साफ नहीं हुई तो खराब हो जाएगी। और उस समय मधुबन में फ्रिज आदि भी नहीं थे, तो कहा क्या करें। तो वो बाबा के पास गई, बाबा आज सब्जी लेट हो गई और अभी सब्जी अगर साफ नहीं होगी तो खराब हो जाएगी, अभी सब सोने चले गए, अभी किसी को बुलाएंगे तो कोई आएगा ही नहीं। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची ठीक है चलो मैं आता हूं। तो बाबा खुद आए और सब्जी जहां साफ करते थे वहां बाबा आया, साथ में बाबा के 2-3 बहनें भी थे, वो लोग भी आए। तो बाबा बैठे वहां के, तो जैसे ही बाबा के बैठे तो सब तरफ ये आवाज हो गई कि बाबा सब्जी में गया है काटने के लिए। तो सब बाबा गया, बाबा गया, बाबा गया, सब भागे हैं, सब लोग पहुंच गए। अगर ऐसे बुलाने जाते तो कोई भी नहीं आता, और बाबा पहुंच गया इसलिए सब आ गए। तो माना बाबा ने खुद ये किसी को डायरेक्शन नहीं दिया कि आओ, बाबा ने खुद जाकर के वहां बैठे और करके दिखाया तो बाबा गया है तो सब पहुंचेंगे। ऐसे हम भी खुद करने लगे हमको देख करके ऑटोमेटिक करेंगे। बाबा ने ऐसे सिखाया, दादियां भी ऐसे ही सिखाती थी कि जब खुद करते हैं तो और देख करके भी करने लग जाते। कभी कभी कहने से ही इंसान करते नहीं है, लेकिन अगर करके उनको दिखाया जाता है तो ऑटोमेटिक करने लग जाते।
बहुत सुंदर जवाब दिया दीदी जी ने। जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसके अंदर बहुत ही साधारणता और लौकिकता थी, जो बहुत एवरेज पर्सन होते हैं बिना एक रूहानियत का भान रखते इस तरह से कर लेते हैं, अपने व्यवहार में आ जाते हैं। लेकिन जो दीदी जी ने बात बताई बाबा के एग्जाम्पल के साथ, वो बहुत ही डिवाइन है कि इस बात को हमने परिवर्तन करके किस प्रकार करना चाहिए। अगर आपको बेहतर तरीका आता है उस चीज का, तो आपने कहने का या बताने का बहुत सुंदर और रॉयल तरीका हो सकता है, या फिर आप करके भी बता सकते हैं। जो टोका टाकी वाली बात होती है, ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, जिससे कि सामने वाला हर्ट हो जाता है और कहता है कि डायरेक्शन मत दो तो ये चीज बहुत ही स्वीटली और बहुत प्यार से कैसे बाबा ने हमें सिखाई, वो चीज आपने अनुभव युक्त तो बताई, इसलिए बहुत बहुत थैंक्स दीदी जी। दूसरा एक बात थी दीदी, हम लोग जब ब्राह्मण परिवार है, हम लोग सब आपस में बहुत ही रूहानियत से, बहुत ही डिविनिटी से चलते हैं, तो जब हम एक दूसरे को दृष्टि देते हैं, दृष्टि का आदान प्रदान करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है दीदी, तो ये दृष्टि देना, कोई देता है कोई लेता है, तो दोनों समझते मैं दे रहा हूं, दोनों समझते ले रहा हूं, तो इसमें दातापन है क्या?
जरूर, क्योंकि दृष्टि, बाबा ने कहा ना कि संगम युग में हम सबकी नैन मुलाकात है, ये नैन मुलाकात भी एक प्यार की निशानी है। और दूसरा, हम आत्माओं के साथ आपस में नैन मुलाकात करते तो शक्ति का आदान प्रदान भी करते हैं, तो ये शक्ति भी देते हैं। और साथ साथ कई बार आप देखेंगे किसी को भी, अगर किसी के प्रति हमारे दिल में प्यार आता है तो उसके सामने देखते हैं तो प्यार के दृष्टि अगर उसको देते हैं तो हमें भी उसकी दृष्टि प्यार की मिलती है। तो हम यहाँ पर दृष्टि से दृष्टि लेते हैं, तो ये दृष्टि से दृष्टि लेना माना प्यार भी देना और शक्ति भी देना। बाबा हम बच्चों को प्यार भी देता है, नैनों से निहाल भी करता है, तो साथ साथ शक्ति भी हम आत्माओं को देता है। ये भाषा है, ये भी एक नैनों की भाषा है, जिससे हम प्यार भी लेते हैं शक्ति भी लेते हैं।
बहुत बहुत थैंक्स दीदी जी। हम आशा करते हैं कि सभी को इस जो बाबा बाप समान दाता बनने का जो एक समान है, ये कॉन्सेप्ट है, इसकी सूक्ष्मता थोड़ी और क्लियरिटी आई होगी और उसको अपने हम प्रैक्टिस करेंगे। बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।